ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग विचारों की दृढ़ता और स्थिरता के लिए 12 भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं। बार बार किसी भी चीज का विचार करने से वह विचार सुदृढ़ होता है और उसका प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। हमने अपने जीवन में देखा कि जो जो चीजें हमें संयोगवश हमारे कर्म के अनुकूल या कि प्रतिकूल मिलती हैं, वे सब क्षणिक हैं। हम अगर उन्हें शाश्वत बनाने का प्रयत्न करें तो वो हमारा प्रयत्न निरर्थक होता है और उस प्रयत्न की असफलता के कारण हमें विषाद और निराशा ही होती है। इसलिए हमने ये निश्चय किया है कि हम अपने संपर्क में आने वाली संयोगी वस्तुओं को या कि भावों को उन सब को क्षणिक मान करके उनमें हर्ष विषाद नहीं करेंगे। हम सोचते हैं कि ये जो हमारी पर्याय है, ये जो हमारा शरीर है, वो भी यदि क्षणभंगुर है तो हम इसको बचाने के लिए कुछ तो उपाय कर सकते हैं। पर हमने वो उपाय करके भी देखे हैं, ये शरीर जैसे हमें मिला है ऐसे ही अपना आयुष पूर्ण हो जाने पर ये भी हमारे सारे उपायों के बावजूद भी हमसे छूट ही जाता है। तब हमने ये निर्णय ले लिया कि साथी सगा न कोई। यहां पर हमारा अपना कोई सगा नहीं है, जिसे हम सगा कहते हैं वो थोड़ी देर का साथ है। सगा तो वो है जिसे कि जुदा ना होना पड़े, लेकिन यहां तो जिसको हम और अपना मान लेते हैं, सगा मान लेते हैं, वह भी हमसे जुदा हो जाता है और हम अकेले ही यहां पर रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में और हमने ये निर्णय लिया कि हम किसी के भी सहारे की आकांक्षा नहीं रखेंगे, क्योंकि जितनी आकांक्षा और अपेक्षा मैं अपने बचाव के लिए रखता हूं उतनी अधिक आतुलता होती। और संसार जिसमें कि मुझे सुख जान पड़ता है, मैंने कई बार अपने जीवन के अनुभव से ये देखा कि उसमें सुख नहीं है, लगता जरूर है वो सुख का भ्रम है, क्योंकि सुख तो वास्तव में वो है जिसमें कि दुख ना हो। ये जो मुझे सुख मिला हुआ है यहां संसार में वो तो दुख से मिश्रित है, उसके पीछे पीछे दुख लगा हुआ है। ये हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जिस चीज से थोड़ी देर पहले सुख जान पड़ता है वही चीज बाद में हमारे लिए दुखदायी हो जाती। कितनी भी सुख देने वाली वस्तु भी इस संसार में क्यों ना हो, उसी चीज से मुझे फिर दुख मिलने लगता है। असल में चीज मुझे सुख दुख नहीं देती, मेरे अपने परिणामों से मैं सुख दुख का भ्रम पाल लेता हूं। मेरे साता के उदय में मुझे वही चीज सुखी देने वाली, सुख देने वाली जान पड़ती है, मेरे असाता के उदय में वही चीज मुझे दुखदायी जान पड़ती है। ये मेरे साता असाता का कर्म का उदय है। मैं इस कर्म से मुक्त होने का प्रयास करूं, इस संसार में सुख दुख के बीच समता रखूं, अपनी इस अज्ञानता को हटाऊं, मैंने संसार भावना से यही जाना और फिर मेरे जीवन में सुख दुख आते हैं तो मैं ये सोचता हूं कि कोई और है जो कि मुझे सुख दुख देता है। मैं भगवान की पूजा भक्ति करूंगा, भगवान खुश होकर के और मुझे सुखी कर देंगे। मैं किसी व्यक्ति की ज्यादा सेवा करूंगा, वो मुझे खुश होकर के कुछ दे देगा। कोई मेरा बिगाड़ किए जाने पर मुझे दुख भी दे सकता है, ऐसा मेरे मन में विचार निरंतर चला करता है। देखता भी हूं मैं इस संसार में कि जिससे थोड़ा सा बना के चलता हूं वो तो काम आता है, जिससे थोड़ा बिगाड़ लेता हूं वो मेरे लिए मुश्किल उत्पन्न करता है। लेकिन मैं उस समय ये भूल जाता हूं कि ये जो मुश्किल आई है वो इस सामने वाले के द्वारा आई है या कि मेरे अपने अंतरंग के कर्म के उदय में आई है। ये जो मुझे सुख जान पड़ रहा है कि दूसरे के द्वारा दिया गया है वो वास्तव में दूसरे के द्वारा दिया गया है, तो फिर ये मुझे हमेशा सुखी बनाए रखे, मुझे कभी भी ये दुखी ना होने दे। पर मेरा सगा बेटा भी क्यों ना हो, मेरे ऊपर दुख आने पर उसे शेयर नहीं कर सकता, वो मुझे हमेशा सुखी नहीं बनाए रख सकता। इसका मतलब है कि ये बाहर की चीजें मुझे सुखी नहीं बनाती हैं, मेरे अपने साता का उदय मुझे सुखी बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सुख और दुख दोनों को भोगने के लिए मैं अकेला ही। शुभ अशुभ कर्म फल जीते भोगे जिये एक ही देते, सुत दारा होए न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये जरा सा लाइन नीचे वाली जरा ठीक नहीं जान पड़ती। जब तक अपन को अज्ञानता है तब तक ठीक नहीं जान पड़ती, ऊपर की लाइन तो थोड़ी सी जमती है कि ठीक बात है शुभ अशुभ मैंने जो कर्म किए हैं उनके अनुसार मुझे भला बुरा फल मिलेगा। लेकिन ये जो सुत धारा हो न सीरी, अरे ये तो मैं ब्याह करके लाया था इसको, ये तो मेरी अपने बेटे हैं, ये अपनी मेरी बेटी है, ये दादा हैं, ये नाना हैं, ये चाऊ हैं, ये संबंध तो मैंने ही बनाए थे, ये सारे संबंध और इस दृष्टि से बनाए थे कि जैसे मेरे सुख में ये सुखी होंगे और मेरे सुख को बढ़ाएंगे, मेरे दुख में दुखी होकर मेरे दुख को घटा लेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि ये मेरे सुख में सुखी होकर मेरे सुख को नहीं बढ़ा पाते और मेरे दुख में कितने दुखी हो जाए मेरे दुख को जरा भी कम नहीं कर पाते। अरे मैं व्यर्थ ही जो है इनसे ये अपेक्षा रखता हूं कि ये मेरे सुख दुख में सहाय होंगे, नहीं, सुख दुख तो मुझे अपने अकेले ही भोगना पड़ेंगे, मेरे शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए यहां मैं अकेला हूं। ये अनुभूति हमारे भीतर निरंतर बनी रहे तो इससे क्या होगा, न किसी से अपेक्षा होगी, न किसी से गिला शिकवा और शिकायत होगी। जिंदगी हो गई हमने अपने भैया को सब कछु करो, लड़का को कितनों हमने करो, भैया को पढ़वे लाखों रुपया में हमने पढ़वाओ और करो, अब देखो सुबह बोल अच्छा लग तक नहीं है, हमारी बहू आई है सुबह भी ऐसी आई है कि कछु हम करते ही नहीं है, अब लियो। अब जी जो अपने मन में विचार आया वो विचार कहां से आया, वो विचार मेरी अपने श्रद्धान की कमी से आया। अगर मैं विचारवान हूं, अगर मैं इस भावना का निरंतर विचार करता हूं तो फौरन जो है मेरे मन में क्या विचार आना चाहिए, करे ये सब मेरे सुख दुख में कारण बने तो बने पर वास्तव में तो मेरे अपने शुभ अशुभ कर्म ही मेरे सुख दुख के कारण हैं। मैं व्यर्थ ही बाहर के लोगों में और अपना कारण ढूंढता हूं और बाह्य कारणों में मैं संक्लेश करता हूं या अहंकार करता हूं। मुझे ऐसे समय पर तो अपने जिन कर्मों से मुझे ये सुख दुख की अनुभूति हो रही है उन कर्मों को काटने का उपाय करना चाहिए, आगे संभल करके कर्म बांधना चाहिए। ये चीज अपने मन में और उत्पन्न हो जावे इसी का नाम तो एकत्व भावना है भैया। अपने लिए निरंतर संयोग बहुत मिलते हैं, चाहे वे सुख के संयोग हो, चाहे वे दुख के संयोग हो, चाहे मित्र का संयोग हो, चाहे शत्रु का संयोग हो, ये संयोग हमेशा मिलते हैं। मित्र के संयोग में सुखी होते हैं, शत्रु के संयोग में दुखी होते हैं, और शत्रु के वियोग में सुखी हो जाते और मित्र के वियोग में दुखी हो जाते। सुख और दुख की पाली बदलती है, बाकी तो सुख दुख तो लगे हुए हैं। किसी के संयोग में सुख होता तो किसी के वियोग में सुख होता है। बताइए ये संयोग वियोग दोनों ही मेरे लिए सुख उत्पन्न करने वाले और संयोग वियोग दोनों ही मेरे लिए दुख उत्पन्न करने वाले, ऐसा मुझे जान पड़ता है। लेकिन वास्तव में मेरे अंतरंग के जो शुभ अशुभ कर्म हैं वही इसमें कारण बनते हैं। ऐसा अगर अपने मन में धीरे धीरे करके और भाव उत्पन्न होने लगे तो ये एकत्व भावना आसानी से अपने जीवन को परिवर्तित करेगी, हमारी सबके बीच में रह करके भी दृष्टि बदल जाएगी, सबके बीच में रह करके और अपना आत्मबल बढ़ाने के लिए है एकत्व भावना। ये तो विचार कर लिया, इससे क्या होगा, इससे हमारा आत्मबल बढ़ेगा, स्वावलंबी बनने की प्रक्रिया शुरू होगी और दूसरे पर अपने कर्मों का बोझा डालने का मन नहीं होगा, अपना बोझा खुद कम करने के लिए उपाय करने का मन हो। अभी तो काम बिगड़ जाने पर उसकी सारी जिम्मेदारी दूसरे के मत्थे डालकर हम उससे सोचते कि मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अब जरा सी दृष्टि बदल जाने से मेरे बिगड़े हुए काम के लिए मैं अपने को जिम्मेदार मानता हूं और उस काम को स्वयं संभाल लेता हूं, अर्थात मेरे अपने अशुभ असाता कर्मों को मैं स्वयं भोगूं और समता पूर्वक भोगूं तो आगे के लिए वो असाता मेरी क्षीण होती चली जाती है। ऐसा भाव अपने आप उत्पन्न होगा तो आत्मबल बढ़ेगा। ये स्वावलंबी बनने और आत्मबल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आसान सा उपाय है। इतनी पराधीनता आज अपन की है, विचार करें तो जरा जरा सी चीजों में सुबह से शाम तक जितनी पराधीनता है उतना ही संकलेश है। और अब उसकी तो काम नहीं चलेगा तो क्या करें, सबको छोड़ के एक तरफ ही अपने बैठ जाए बाबा जी बन जाएगा? नहीं, बाबा जी बनने से भी नहीं होगा। बाबा जी बन के भी अपने भीतर की स्वाधीनता नहीं आई तो क्या काम के बाबा जी? स्वाधीनता तो अपने ही जीवन में लाना पड़ेगी, अपने ही परिणामों में। स्वाधीनता का मतलब क्या है? यही है कि अपने कर्मों का कर्ता भोक्ता स्वामी मैं स्वयं हूं, दूसरे के मत्थे नहीं डालो। अपने शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता भोक्ता स्वामी मैं स्वयं हूं। इनने बिगाड़ दो उनने अच्छो कर दो, सुख जो उनने अच्छो कर दो सुखी, हमारे हो गए जो उनने बिगाड़ दो सुखी, पराये हो गए। अब लियो ये खेल तो दिन भर चलता अपने पराये का, उसके अलावा और कौन सा खेल है बताइए? लेकिन हम इससे थोड़ा सा ऊपर उठें, सब हमारे अपने हैं। हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता है? सब हमारे अपने हैं, लेकिन सब अपने अपने हैं, क्योंकि सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता। आचार्य महाराज से जब दीक्षा हुई 1987 में, पहली बार आयिका माता जी की दीक्षा हुई थी और उसी समय 11 छुटलक जी, 12 छुटलक जी बने थे, 11 माता जी बनी थी, 23 दीक्षाएं हुई 1987 में, और 23 महाराज पहले से थे। उपासनाथ भगवान की समोशरण आया था, 23 में तीर्थंकर भी हैं, सो अच्छा क्रम बैठा था कि 23 पहले से थे, 23 में भगवान की समोशरण आया था और 23 दीक्षाएं और हुई। ऐसा सब बड़े उत्साहित थे हम लोग। और अब हमने तो जो है 4-5 महाराज जी देखे आचार्य श्री के साथ में, बल्कि 3 ही महाराज थे उस समय से, और फिर देवन एक साथ 40 महाराज बैठे हैं, तो क्या अपन भी उसमें शामिल हैं? गदगद हो गया मन। हमने हाथ जोड़ के आचार्य श्री से कहा भक्ति के बाद सुबह सुबह कि महाराज कुछ उपदेश तो दे, आज हम लोगों के लिए विशेष रूप से आप कुछ कहो। तो आचार्य श्री प्रसन्न तो थे ही, प्रसन्नता किस बात की है कि हमारे शिष्यों की संख्या बढ़ गई, इसमें प्रसन्नता है ये भैया? ऐसा न समझना। प्रसन्नता इस बात की है कि जे पता नहीं संसार अपना बढ़ाते सो इतने जीव मोक्ष मार्ग पर लग गए, इस बात की प्रसन्नता है। मोक्ष मार्ग पर लगते देख करके जान करके प्रसन्नता होना नहीं, हमारे अनुसार चल रहे इसे हम प्रसन्न हैं, तो जो तो संसार ही होगा और कछु नहीं। हाँ जी जी, बहुत दृष्टि का ही फर्क है और कुछ नहीं है। उनको प्रसन्नता थी कि चलो इस तरह से ये सब जीव मोक्ष मार्ग पर लग गए हैं और अपना अपना कल्याण कर जाएंगे। मैं तो निमित्त हूँ। कई बार आचार्य यही चीज कहते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, बाकी आप अपने कल्याण के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, आप करो तो और नहीं करो तो आप अपने परिणाम स्वयं संभालो। अब आचार्य ने 2 बातें कही और बहुत छोटी सी बात थी, आज वो बात एकदम स्मरण में आ गई। उपदेश क्या था कि देखो जब सबके बीच अपनी चर्या करो, बोलो बैठो उठो, तो क्या भाव रखना कि जी सब हमारे साधर्मी हैं, सो सब हमारे हैं, तो सबके सुख दुख का मुझे ध्यान रखना है। किसी के भी दुख में मैं निमित्त ना बनूं, सुख में कोई अपना निमित्त बनावे तो बनावे, लेकिन मैं किसी के दुख में निमित्त ना बनूं, जिसकी जितनी भी सेवा हो सके सो मैं करूं। जी हो गया। और फिर सुनो, इतना ही नहीं है, जब सामायिक में बैठो तो विचार करना कि कोई किसी का नहीं है, सबको अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ेगा। देखो एक हो गया व्यवहार जिसमें कि हम ऐसी अपनी चर्या करें, ऐसे सबके बीच उठे बैठे बोले बात करें जिसमें कि अपनापन झलके, और जब
स्वस्थ होकर के आत्मा में लीन होवे तो अत्यंत स्वावलंबी और कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, ऐसा भाव रख करके और अपने कर्मों की निर्जरा का उपाय करें, अपने सुख दुख के लिए अपने शुभ अशुभ कर्मों को ही निमित्त माने, कितने आसानी से निश्चय और व्यवहार दोनों की दृष्टि आचार्य महाराज ने इतनी आसानी से दे दी। यही एकत्व भावना है। एकत्व भावना की मायने ये नहीं है कि सबसे अलग थलग छिटक के एक तरफ खड़े हो गए, सो हो गए भैया होशियार, एकत्व भावना हो गई। हाँ, सबके बीच में रह करके भी अपने कर्मों का स्वामी तो मैं हूँ, अपने शुभ अशुभ कर्मों के उदय से मैं सुख दुख पाता हूँ, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, न किसी से शिकायत करता हूँ। ये भाव अपने भीतर बना रहे तो अपन जहाँ भी हैं वहीं पर ये एकाकी पने का भाव बना रह सकता है, ये एकत्व भावना अपने भीतर बनी रह सकती है। और तो सब चीजें तो छोड़ो, अपनी देह भी जो है वो अपन से पृथक है। कल अपन इस बात की चर्चा करेंगे, बात एक ही है। पहले अपन ये चर्चा कर रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, और फिर बाद में देखेंगे कि मेरे से पृथक पृथक कौन कौन है। पृथकता का विचार करने से अपने प्रति एकत्व का भाव आता है, और अपने एकत्व का भाव आने से बाह्य वस्तुओं से पृथक पने का भाव आता है। पृथक होने नहीं जाना है, वे तो पृथक हैं, हमें सिर्फ अपनी बुद्धि में उनसे पृथकता का जो है अनुभव करना है। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, बस इतना ही। मैं बहुत ज्यादा तैयार नहीं था आज, क्योंकि दूसरे काम में लगा हुआ था, तो इतनी चर्चा करेंगे, फिर जो रह जाएगी तो हम तो कल फिर से विस्तार लेंगे, सीखों कोई दिक्कत नहीं। महाराज का हाल ठीक से हो गया, इसी में प्रसन्नता है। तीन दिन से जो है वो अस्पष्ट थी। भैया जी सब चर्चा काय के लाने हैं? अकेली चर्चा के लाने नहीं है, जीवन में भी आवे हैं। तो जीवन में तो आई मैं, और अकेली वाणी में आ गई तो का काम की। तो इस वजह से अपन थोड़ी सी चर्चा करके और आज इतना ही रखेंगे। एक बाबा जी के यहाँ पर राजा जी पहुंचे, बस दूसरी घटना है, बाबारी नहीं जो पहले सुनाई थी राजा जी की, नहीं तो आप समझो कि वह राजा जी के सर। अब क्या हुआ कि वो पहुंचे और उनने कहा कि महाराज हमें भी आप अपनी सेवा का मौका दो। अच्छी बात है भैया, कई जने सेवा का मौका चाहते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि देखो हम सेवा का मौका तो देंगे, लेकिन तो हम जो कह चुके हैं वह कर हो। कहले अरे आप जो कह चुके हो वह कर है, बहुत कठिन है ऐसा। हाँ, कि जो कह चुके हो। तो बाबा जी ने उनको और क्या काम सौंपा अपने आश्रम का, झाड़ू लगाने का। अब सब जितने भी और जितने भी बाबा जी थे भी सब भी खुसर फुसर होने लगी कि इतने बड़े राजा जी को जी अपने गुरु जी ने और बताओ झाड़ू लगा दे को काम, अरे और कौन अच्छो सो सौंप दो हो। तो अब देखो अच्छा और बुरा काम है, झाड़ू लगाने का काम बुरा और आप ही सर बन के बैठने का काम अच्छा, और मैं लगावे कौन हूँ झाड़ू कमरा में तो सबरो आखिर में आप इसमें बैठ को बैठ को निपुड़ जे का के निपुड़ जे। हाँ, मैं बैठते एक ही दिन बैठते आप इसमें घर पूछो मिल जाते तो बैठ जाते, और बाबा आप इसमें चाप बने बैठ जाते। मतलब वो झाड़ू लगाने वाले का काम कमती नहीं है, एक दिन दो दिन रास्ता नहीं जड़े तो रास्ते में से निकलने वाले को मुश्किल हो जाएगी, उस काम को छोटा नहीं समझना। लेकिन लोगों के मन में तो यही धारणा थी, और बाबा जी ने वही काम सौंपा। सो झाड़ू लगाते हुए बहुत दिन हो गए, अब झाड़ू ही लगाते बस एक ही काम, छह महीने हो गए झाड़ू लगाते लगाते। अब कहा कि कुछ तो इनका काम बदल दो, अब तो थोड़े इनको मैंने क्या कहते इनको प्रमोशन है कि नहीं, तो थोड़ा प्रमोशन कर दो। तो बाबा जी ने कहा कि देख लें हम। फिर उसके बाद भगवान की भक्ति करने का काम इनको सौंप दो अब तो। तो उन्होंने कहा भगवान की भक्ति करने का काम मैं सोच करके सौंपूंगा, और जो झाड़ू लगाने वाली एक माँ थी उसको धीरे से कह दिया कि जब मेरे पास ये राजा जी नहा धो करके अपनी झाड़ू पोंछा करके नहा धो के आते थे बाबा जी के पास, जब आन लगे तो तुम धीरे से और झाड़ू से थोड़ा कचरा उचार देना। ठीक, अपनी झाड़ू पोंछा करके राजा साहब और जैसे ही बाबा जी के पास आने लगे नहा धो करके, तो वो तो पहले से तय था, तो उसने जोर से झाड़ू लगाई और ढेर सारा कचरा राजा साहब के ऊपर वो चट गया। अब राजा साहब के ऊपर तो राजा तो आग बबूला हो गए। क्या समझा तुमने? छह महीने पहले तो मेरे सामने आने से थरथर कांपते थे और आज मेरे ऊपर कचड़ा उछाल दिया ऐसा। तो आए राजा जी बाबा जी के पास में, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अभी और झाड़ू लगाओ। तो लोगों ने पूछा कि अभी भी इनसे झाड़ू लगा रहे? कहले हाँ अभी तो भौंकता है, अभी ठीक शांत नहीं हुआ। हाँ अब देखो आप, अब जो है 6 महीने और हो गए। तो 6 महीने के बाद फिर से जब नहा धो के आ रहे थे तो फिर अब की बार तो इतना ही कहा कि जोर से मत करना, तुम तो अकेली धीरे से झाड़ू छू जाए बस, कचरा मत उछालना, झाड़ू झाड़ते झाड़ते छू जाए बस। तो अब की बार ऐसा ही हुआ, राजा साहब नहा धो के बाबा जी के पास आ रहे थे तो झाड़ू छू गई। तो अब की बार बोला तो कुछ नहीं, लेकिन आंखें ऐसी दिखाई गुस्सा में, दिखा के बते हैं तो गड़बड़ हो जे है कि नहीं। तो अब जब बाबा जी के पास आए तो बाबा जी ने कहा कि अभी तो और बेल लगेगी, अभी समय है। लोगों ने पूछा कि अब तो बढ़िया हो गया? कहले नहीं, अभी तो आंख दिखाता, आंख अभी तो भौंकना बंद तो हो गया, लेकिन अभी आंख तो दिखाता है। और फिर जब तीसरी बार 6 महीने के बाद और जब राजा नहा धो करके आता है, वो भी ऐसा नहीं था कि न हुए समझदार, अपने शुभ अशुभ कर्मों का अपने को कर्ता मानना और परखों दोष न देना, ये प्रवृत्ति छोड़ना आसान नहीं है भैया। अच्छे अच्छे लोग जो है इस कचरे को फेंक नहीं पाते, झाड़ू कितने ही लगा ले मैं बाहर, वास्तव में झाड़ू पहुंचा तो भीतर के अपने परिणामों को लगाने का है। अब की बार पूरी भरी टोकनी उसके ऊपर उलट देना ऐसा बाबा जी ने कहा था। सो पूरी कचरे से भरी टोकनी नहाए धोए राजा जी के ऊपर जैसे ही डाली, राजा जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक और डालने वाले को देखा और कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा जैसे ही कहा तो कहते हैं कि अब तो राजा को बाबा जी के पास पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी, दूर बैठे बाबा जी स्वयं उठ करके आए और राजा साहब को गले लगा लिया कि अब तुम जो है भगवान की भक्ति के योग हो गए, अब तुम्हें मैं कोई आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ाने के लिए और आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर अपने शुभ अशुभ कर्मों को स्वयं भोगने का साहस आ गया, तुम्हारा आत्मबल बढ़ गया है, अब समता भाव तुम्हारे भीतर धीरे धीरे आने लगा है। ये एकाकी पने का भाव हमारे जीवन में समता लाता है, हमारे आत्मबल को बढ़ाता है, हमें स्वावलंबी बनाता है, हमें संसार में जो निमित्त हैं हर्ष विषाद के उनके बीच भी और आसानी से अपना जीवन जीने का साहस देता है। ऐसी ये एकत्व भावना अपन भाएं और अपने परिणाम संभालें, यही अपना उद्देश्य है भाई। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर में जो निमित्त हैं हर्ष विषाद के उनके बीच भी और आसानी से अपना जीवन जीने का साहस देता है। ऐसी ये एकत्व भावना अपन भाएं और अपने परिणाम संभालें, यही अपना उद्देश्य है भाई। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर में।